प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्य पांडे के साथ। मध्यपूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने पर्शियन गल्फ के सभी प्रमुख बंदरगाहों को बंद करने की चेतावनी दी है। आपको बता दूं कि ये कदम अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में उठाया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार नाकेबंदी के पहले 48 घंटे में कोई भी जहाज अमेरिकी नौसैनिक बलों को पार नहीं कर पाया है, जो इस ऑपरेशन की सख्ती को दर्शाता है। इस घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के अधिकारी तेहरान पहुंच चुके हैं और वे अमेरिका ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की बातचीत को संभव बनाने में मध्यस्थता करेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के अधिकारों और राष्ट्रीय हितों को स्वीकार करे। वहीं अमेरिका ने चाइना को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान को हथियार सप्लाई करता है या उससे तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया है और ऊर्जा आपूर्ति एक प्रमुख रणनीतिक मुद्दा बन गई है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजिंग अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम और शांति वार्ता के प्रयासों का समर्थन करता है। बात करें इन्फ्लेशन की तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर साफ दिखाई देने लगा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि यदि मध्यपूर्व में चल रहा संघर्ष जल्द खत्म नहीं हुआ तो दुनिया एक संभावित मंदी की ओर बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद कहा है कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक समय है। आईएमएफ की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऊर्जा संकट के कारण कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। आज ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स रोजगार के आंकड़े जारी करेगा, जो ये दिखाएंगे कि युद्ध का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बेरोजगारी दर 4.3% पर स्थिर रह सकती है, जबकि मार्च महीने में लगभग 25,000 नई नौकरियां जुड़ने की उम्मीद है। ये डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने के बाद का पहला पूरा आर्थिक संकेतक होगा, जिसने वैश्विक तेल व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया सक्रिय कूटनीति अपना रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी आज मलेशिया में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति को सुरक्षित करना है ताकि वैश्विक संकट का असर ऑस्ट्रेलिया पर कम पड़े। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि मौजूदा संसाधन स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एएमए ने अपने प्री बजट प्रस्ताव में कहा है कि लोगों को जीपी सेवाओं तक बेहतर और लंबी पहुंच मिलनी चाहिए, साथ ही अस्पतालों में भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है। हालांकि जनवरी में नेशनल कैबिनेट द्वारा 25 अरब डॉलर का सार्वजनिक अस्पताल फंडिंग समझौता किया गया था, लेकिन एएमए का मानना है कि ये भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के भेदभाव आयुक्त गिरिधरन सिवरमन ने सरकार से नेशनल एंटी रेसिज्म फ्रेमवर्क लागू करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की नई रिपोर्ट में सामने आया है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद यहूदी, मुस्लिम, फिलिस्तीनी, अरब और इजरायली समुदायों के खिलाफ भेदभाव के मामलों में वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट देश में सामाजिक एकता और सामुदायिक सद्भाव के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है। वहीं विक्टोरिया के प्रीमियर जसिंटा एलन ने अपने नए कैबिनेट में पुरुष और लड़कों के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया है। इस नए विभाग की जिम्मेदारी पॉल एडब्रुक को सौंपी गई है। प्रीमियर का मानना है कि समाज में पुरुषों को आज अलग तरह के सामाजिक और मानसिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है और ये मंत्रालय उन मुद्दों को संबोधित करेगा। मंत्री एडब्रुक ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तथाकथित मैनोस्फीयर के बढ़ते प्रभाव को नजदीक से देखा है, जो युवाओं के व्यवहार और सोच पर असर डाल रहा है। बात करें भारत की तो मोदी सरकार संसद में आज 3 अहम बिल पेश करने जा रही है। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज करना है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला ये विशेष सत्र सदन से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।